संबंध पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझमें चित्त वाला हो जा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने चार बातें बताई। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। मत पर स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। मत चित्त सततम भव, निरंतर मुझमें चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि और संसार के व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब भगवान के ही है। भगवान इन सब के मालिक है। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर इंद्रियां मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए। मत पर भगवान ही मेरे परम आश्रय है, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी करना नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है, और देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए पैसे कुटुंब शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में ये समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है, परंतु वास्तव में ये बात बिल्कुल झूठी है, केवल भ्रम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है, फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि आदि हो, ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर है, इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय है, अपने हैं, उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। मैं तो हूं उन भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट बड़ी। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपने मुकुटमणि नहीं बनाएगा, वह तो उसे अपना दास बनाकर पद्दलिति करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य। गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, केवल आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूं। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तब भी मैं हूं, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूं, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूं। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूं। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूं। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है। समत्वमारा धनमच्युतस्य, विष्णु पुराण। इसलिए यहां भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। मच्चित्त सततम भव, जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वो प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चित्त का तात्पर्य है। मच्चित्त पद के साथ सततम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मुझमें चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूं। इस प्रकार अहंता भगवान में लग जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूं, इस प्रकार अहंता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहंता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का तो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझमें चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, अर्थात तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे। परंतु भगवान का नाम जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तराव तर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। भक्ति रसायन में आया है, काठिन्यम विषय कुरिया द्रवत्वम भगवत पदे उपाय शास्त्र निर्दिष्ट रनुक्षण मतो बुध। प्रेम संबंधी विशेष बात, चित्त में सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है। वास्तव में तो संसार के साथ कभी संयोग हो ही नहीं सकता, अतः नित्य वियोग तो है ही, परंतु चित्त में सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग प्राप्त हो जाता है। नित्य योग में योग और नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्ति को लेकर होती है। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे श्री राधा और कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्रीजी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रीतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं, हे प्यारे तुम कहाँ चले गए, तो यह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं आए हैं पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय हो गया, श्याम सुंदर तो मिले ही नहीं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं, यहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार से है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, वे फिर चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन सदा खींचता है, इसलिए इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेमी और प्रेमास्पद में योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। प्रेमी और प्रेमास्पद के योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। मान लो यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो, तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखंड और एक रस होगा। अतः प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतरित होते हैं, जिससे प्रेमी में वियोग भाव पैदा होता है, जिससे वो रस बढ़ता है। प्रेमा भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है, दासी, सख्य, वात्सल्य और माधुरी। इन रसों में दासी से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुरी रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषयों में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान भी पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है, परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है, इसलिए भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाएगी तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य, दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, मुझ पर उनका पूरा अधिकार है, वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मुझसे चाहे जैसा काम लें। मुझ पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य, सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति ये भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ, उनका मुझ पर पूरा अधिकार है और मेरा भी उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है, अर्थात मैं भगवान की माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है, शिष्य है, इसलिए उसका पालन पोषण करना है, उसकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ को साथ में भेजते हैं। माधुरी रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति होती है, अतः इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता अर्थात घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उसके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसे भाव बने रहते हैं। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है, इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है, अतः एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह काम तो 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीवों में रहता है और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें तो काम की अर्थात सुख भोग की इच्छा अत्यधिक होती है, परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह रहता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद भरा रहता है। काम में जड़ता माने शरीर इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता की मुख्यता रहती है, काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है, काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, सर्वथा स्वतंत्रता होती है। काम में यह मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम का मार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम का मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात द्वैधी भाव कभी मिटता नहीं है और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी मिटती नहीं है। द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक् जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, अथवा भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, पारमार्थिकम अद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तु मुक्ति शताधिका। बोधसार भक्ति रसायन में आया है। परिशिष्ट भाव, पूर्व श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब उसकी विधि बताते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। साधक के लिए दो ही खास काम है, संसार के संबंध का त्याग और भगवान के साथ संबंध। पूर्व श्लोक में आए मद विपाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है और इस श्लोक में आए बुद्धि योग उपाश्रित्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। बुद्धि योग उपाश्रित्य कहने का तात्पर्य है कि संसार का सूक्ष्म संबंध भी न रहे। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय 2:49, किसी के प्रति किंचित मात्र भी राग द्वेष न रहे। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से समता स्वतः आ जाती है। ये समता ही बुद्धि योग है, इसलिए भगवान ने कहा मत चित्त सततम भवः।